Senti? Tutto va bene? Tin bindi, lavani che visceme carete. Chauda bara, 94. Samay sankalp bor dwara. Kamai jama karne ka aadhar. Tin bindi lavana. Kya Bab dada ne dekha. Samay ki khazane ka mahatva jitna rakhna chahiye, utna kai bachche nahi rakhte. एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत न चाहते भी आकर्षित कर लेती है और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया कि एक सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। एक घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है, तो अवश्य कौन सी भावना है? अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है, तो अवश्य अशुभ भावना है। साधारण, व्यर्थ, नेगेटिव और तो अवश्य कौन सी भावना है? अकल्याण, स्वार्थ, नीच, हाँ, नीचे गिराने वाली, टॉन्टिंग, दुर्भावना, हीन। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है, तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। आपने बोला था, वो तो अनेक है। ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंट में समाई हुई होती है। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हैं, मेरी भावना, मेरे भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, ये बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होता है? वेस्ट में हुआ ना, तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या गंवाने का खाता ज्यादा होगा? ये तो गवाया ना, तो बोल में भी गंवाने का खाता ज्यादा होता है। तो बोल को भी चेक करो। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ ही है। समर्थ बोल किसे कहेंगे? अर्थ सहित समर्थ, जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव या सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, तो क्या करना करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी कोई हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ पार्लब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे? पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ। पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हैं। संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने देखा, समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते। एक दिन का भी चार्ट चेक करे तो मेजॉरिटी का समय कहाँ जा रहा है? मेजॉरिटी, बहुसंख्यक, वेस्ट के खाते में जमा दिखाई देता है। द्वापर काल से कौन सी आदत पड़ गई है? व्यर्थ सुनना, देखना और फिर सोचना की आदत न चाहते भी क्या करती है, आकर्षित करती है। व्यर्थ सुनना, देखना और फिर सोचना। अगर देखेंगे और सुनेंगे तो स्वतः ही सोच चालू हो जाएगी, और ये आदत क्या करती है, आकर्षित करती है। तो इस आदत को तोड़ना है ना, ना तो व्यर्थ देखना है, ना सुनना है, ना ही फिर सोचना है। और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है, तो क्या करें, कोई भी समय हमारा वेस्ट ना जाए, कोई भी समय, या तो ज्ञान में हो, या तो योग में जाए, या तो सेवा में। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, कहाँ क्या हो रहा है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। जो जो व्यर्थ है, जब तक आत्मा व्यर्थ से ऊपर नहीं उठती है, समर्थ में स्थित नहीं हो सकती। बाबा ने कहा ये आकर्षित करती है आदत। व्यर्थ सुनने में इंटरेस्ट, व्यर्थ देखने में इंटरेस्ट, और फिर व्यर्थ सोचना। व्यर्थ जो भी होगा वो बहुत दिलचस्प होता है, इंटरेस्टिंग होता है, नई बातें होती है उसमें जो हमको पता नहीं होती है, ऐसी ऐसी बातें होती है, इसलिए आकर्षित करती है वो हमको। यह सोचने पर बाध्य करती है कि यह जानना बहुत जरूरी है, परंतु वो है तो व्यर्थ ही ना। वो सारी बातें जिसमें ज्ञान और योग की हमारी स्थिति ऊपर नहीं जाती, जिससे वो सभी व्यर्थ है। तो द्वापर काल से व्यर्थ सुनने की आदत है, और यही आदत आकर्षित करती है, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया, सेकंड का भी महत्व इतना है। तो एक तो समय और दूसरा बोल। मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। बैठकर बातें करना, चर्चा करना, घूमना फिरना, यहां वहां की बातें, मौसम की बातें, लंबा लंबा समय तक, पास्ट की बातें, जो हुआ नहीं है उसका चिंतन, उसकी बातें, बीमारियों की बातें करना बैठकर, एक घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। हमारा हर बोल चार्ज्ड हो किससे, आत्मिक भाव और शुभ भावना से। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है, तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। हर बोल में शुभ भावना, हर बोल में श्रेष्ठ भावना, वो तो अनेक है। ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई होती है। एक है ईर्ष्या, जलसी, हसद, एनवी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा है घृणा, डिसलाइक, ईर्ष्या, हसद और घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंट। एनवी एक है, जलसी, ईर्ष्या एक है, हसद, हसद अर्थात और हिंदी में एक है एनवी, हसद, एक है ईर्ष्या जिसको जलसी कहते हैं, एक है हसद जिसको एनवी कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? ईर्ष्या या द्वेष कहो, हसद को द्वेष भी कहा जाता है, तो ईर्ष्या और द्वेष में क्या अंतर है नागेश भाई? हसद या ईर्ष्या में क्या है? वैसे तो बहुत करके सेम सेम ही है, फिर भी अंतर तो है, एक बेसिक अंतर है। ईर्ष्या जो है वो थोड़ा डेंजरस है, उसमें ईर्ष्या जो है उसमें बदले की भावना भी है। ईर्ष्या को समझने से पहले हसद को समझना जरूरी है। हसद अर्थात एनवी, एनवी अर्थात किसी के पास कोई वस्तु है और हमारे पास वो नहीं है, दूसरे के पास है हमारे पास नहीं है, इसको कहा जाता है हसद, ईर्ष्या, एनवी। ये बेसिक डिफरेंस है। ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या में, जलसी में, वस्तु हमारे पास है पर वो छिन जाने का भय है, उसमें बदले की भावना भी है। पहला जो है वो थोड़ा माइल्डर फॉर्म है। एनवी जो है, एनवी कहो, हसद कहो, द्वेष कहो, ये जो द्वेष है ये थोड़ा माइल्ड है, इसमें दूसरे के पास है हमारे पास नहीं है। जैसे कोई किसी के पास कार है, गाड़ी है, बंगला है, हमारे पास नहीं है, यहाँ पर द्वेष उत्पन्न होता है। मत्सर अभी ये दोनों को में ही कंफ्यूजन है, उसको बीच में बदलाओ। ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, घृणा लगभग लगभग करीब करीब सभी समान है, परंतु ये दो में साइकोलॉजी कहती है इसमें डिफरेंस है। साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल है, साइकेट्री की जो किताबें हैं, उसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस बताया। एनवी अर्थात वह चीज जो दूसरों के पास है हमारे पास नहीं है, उसके आधार से उत्पन्न हुआ जो भाव है, जो क्या कहेंगे उसको, जो क्रोध, माइल्ड क्रोध है, जो एक भाव उत्पन्न हुआ है कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, परंतु इसमें बहुत ज्यादा बदले की भावना नहीं है। परंतु ईर्ष्या जो है, जलसी जो है, वो जलन है, वो जलाती है, उसमें और बहुत सारी चीजें, उसमें डर भी है कि हमारे पास जो है वो कोई छीन न ले, या दूसरों के पास तो है ही, हमारे पास वो बिल्कुल नहीं है, ये भाव भी उसमें समाहित है। तो ईर्ष्या ज्यादा खतरनाक है। एनवी, हसद, द्वेष थोड़ा कम खतरनाक है, परंतु सब नेगेटिव फीलिंग्स में आते हैं। दोनों उसका वो छोटा भाई है, ईर्ष्या बड़ा भाई, द्वेष छोटा भाई, हसद डाह भी कहते हैं उसे हिंदी में, डाह। तो माया की भावना है ये तीन कौन सी है? माया की भावना। ये कब होगी? अगर शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं, तो समझो ये तीन है। किसी ना किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी से हम ईर्ष्या कर रहे हैं। कोई सफल हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है, ईर्ष्या। किसी के पास कोई वस्तु है, हमारे पास वो नहीं है। किसी के पास कोई अच्छी चीज है, हमारे पास वो नहीं है, द्वेष, हसद। हसद उर्दू शब्द है। तो फिर एक घृणा, घृणा क्या है? एक्सट्रीम नेगेटिविटी। घृणा क्या है? डिसलाइक, जिसको इंग्लिश में डिसलाइक, फिर भी बहुत छोटा शब्द है,
पसंद नहीं,
नापसंद ही घृणा नहीं है। नापसंदी प्लस नफरत इक्वल टू घृणा। घृणा में घृणा आती है। बाबा मुरली में कहते हैं तुम्हें इस संसार से घृणा आनी चाहिए। कुछ दिन पहले एक हफ्ते के मुरली में ही था ना, सतयुग में जो मोर का पंख लगाते हैं वो कोई नीचे गिरा हुआ नहीं लेते हैं, और ना ही पक्षी जानवरों से निकालते हैं, वहां इस तरह की कोई गंदी चीज नहीं होती। उस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि जहां पर जिससे घृणा आए। जैसे यहां तुमको घृणा आती है, वहां ऐसी कोई घृणा नहीं आती। बाबा ने घृणा शब्द का प्रयोग वहां पर किया था। तो घृणा अर्थात एकदम, जिसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम हेट्रेट, बिल्कुल पसंद ही नहीं है, देखना भी पसंद नहीं है। घृणा, घीन, घृणा आना, घीन आना, जिसमें नफरत भी समाई हुई है। तो बाबा ने कभी ये भी कहा, अगर किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा है तो क्या
मनसा सेवा नहीं कर सकते,
संपूर्ण नहीं बन सकते। अगर किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा है तो ये सब माया की भावनाएं हैं। ये कब होगी? अगर ये दो भाव नहीं तो उसके बाद जो कुछ बच जाता है वो यही है, सब माया की भावना है। शुभ भावना नहीं है और श्रेष्ठ भावना नहीं है। तो जो बच गया वो है माया की भावना, जिसमें ईर्ष्या आएगी, हसद होगा और घृणा उत्पन्न होगी, आत्माओं के प्रति घृणा। ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई होती है। घृणा मतलब नफरत, एक रीति से सेटल्ड नफरत। बड़ी गलती किया, या फिर किसी का संसार में कोई अगर कुरूप है, देखने में इतना अच्छा नहीं है, मतलब उसके प्रति घृणा भाव उत्पन्न होता है। जैसे वो दिखाते हैं कि एक बार एरोप्लेन में एक लेडी फ्लाइट बोर्ड करती है और अंदर जाती है, तो वो तो रहती है फेयर, सुंदर, वाइट स्किन्ड, तो देखती है कि उसकी जो सीट है उसके बाजू में, दो सीट होती है इकोनॉमिक क्लास, उसके बाजू की जो सीट है उसमें एक निग्रो व्यक्ति बैठा हुआ है, एकदम काला काला। तो वो तो वो जब देखती है तो एकदम उसके मन में घृणा भाव उत्पन्न होता है उसके प्रति, कि इसके बाजू में मैं कैसे बैठूं, इंसल्ट जैसे है, तो उसके इतना वो काला, कुरूप, भद्दा, अप्रीतिकर। तो वो वहां के जो क्रू होते हैं उसको रिक्वेस्ट करती है कि आपके पास अगर कोई दूसरी सीट है तो मुझे दे दो, क्योंकि उसके सामने बैठना तो अपमानजनक है, मैं उसके पास नहीं बैठ सकती। तो कहते हैं मैं ट्राई करता हूँ। वो जाता है उधर और अंदर थोड़ा डिस्कशन होता है कि कोई कोई सीट है क्या खाली। हाँ, तो फिर पता चलता है हाँ एक सीट तो है। तो फिर से वो व्यक्ति आता है, वो वहां बैठा रहता है, ये पीछे खड़ी रहती है। वो जो आता है क्रू, वो कहता है उसको, वो जो ब्लैक मैन रहता है, निग्रो रहता है, कि कृपया आपके लिए एक दूसरी सीट उधर रिजर्व्ड है, इस व्यक्ति के साथ बैठना आपके मान सम्मान के नीचे है। वो उसकी जैसे महिमा कर रहा है उसी के सामने। वो क्या कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं बैठना है। तो वो उस जाति, ये देखा ना उसने, रंग भेद देखा, तो उसका उसको क्या कहता है कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सीट उधर रखी हुई है, ये सीट छोड़ दो, क्योंकि इसके साथ बैठना ये तुम्हारा जो स्टेटस है उससे नीचे लाना है, क्योंकि वो रंग को देख रही है। तो उस स्त्री को वहीं पर अपमानित महसूस होता है, उसको अपने जैसे ये पता चलता है कि मैं क्या कर रही थी। तो इस तरह से दिखाते हैं वो, तो घृणा अभाव उत्पन्न होता है किसी के रूप को देखकर, रंग को देखकर, या किसी का जो शरीर है। अष्टवक्र की कहानी है ना, मुड़ा हुआ रहता है शरीर, सब लोग हंसते हैं, तो कहता है वो, तुम सब कौन हो, चमार हो, जो देह को देख रहे हो। तो घृणा उत्पन्न होना किसी का चेहरा देखकर, अरूप, कुरूपता को देखकर, ये भाव उत्पन्न होते हैं मन में। या किसी ने कोई व्यवहार गलत किया, दुर्भाव है किसी के मन में, वो देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न होना उसके प्रति। या कभी कभी तो ऐसा होता है, छोटी छोटी बात, तो छोटी छोटी गलती की किसी ने, उसके बाद भी हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। केवल मोबाइल बच गया उसका, बहुत बड़ा पाप नहीं किया है योग में, पर बज रहा है। तो वहां पर भी एक जैसे घृणा उत्पन्न हो जाती है। हाँ, एक है वो और दूसरा फिर है गुण। अगर व्यवहार ही ठीक नहीं है, कटु बोल है, हर बोल में व्यंग बान है, कटाक्ष है, क्या कमेंट्स करते हैं, तो फिर वो बोल पसंद नहीं आते है। चेहरा बड़े सुंदर है,
बोल के कारण वो आदमी पसंद
है। हाँ, वो अवॉइड करना चाहते हैं। ऐसे कुछ कुछ लोग हैं यज्ञ में, इधर भी है, यहाँ पर भी है, कि वो यहाँ रहा तो हम सोचते हैं चलो यहीं से चले जाए, पता नहीं वहां से गए तो कुछ तो बोलेगा ही बोलने सिवा उनका योग लगता नहीं है, मन में शांति की अनुभूति नहीं होती है जब तक एक दो को घायल नहीं कर देते। शाम बाबा से अतीन्द्रिय सुख और अति प्यार का अनुभव ही नहीं होता है उन, कि जब तक एक दो को घायल नहीं कर देते, तीर नहीं चलाते जब तक बाण, व्यंग बाण जब तक नहीं चलाते, दूसरों को कुछ ना कुछ नसीहत श्रीमत जब तक नहीं देते, दूसरों को ये नहीं बता देते कि तुम ये जो कर रहे हो ये श्रीमत के विरोध है, जब तक ये तुम ये जो कर रहे हो ना इससे बीके की बदनामी हो जाएगी, ऐसे मत करो यहाँ, ये जब तक बोलते नहीं है तब तक शांति नहीं मिलती है, ऐसे भी है। जब सबसे ज्यादा जैसे पर बाबा ने कहा है दूसरों को समझाना है, पर उसकी तीन स्टेप है, एक अव्यक्त वाणी चली थी याद है नहीं, अगर दूसरों को शिक्षा देनी है तो उसकी तीन स्टेजेस है, आप दो स्टेजेस को क्रॉस करके तीसरा सीधा थर्ड स्टेज पर चले जाते हो, पहले उसको समान में स्थित करो, अगर किसी को सिखाना है ना बहुत जोर जोर से चप्पल से चल रहा है तो हमारा लक्ष्य होता है कि सबसे पहले मैं उसको बताऊं, क्योंकि यहाँ हमारे अहंकार की बहुत बड़ी तृप्ति हो जाती है, दूसरों को श्रीमद् सुनाने के बाद दूसरों को करेक्शन देने के बाद बहुत ही असंतोष का अनुभव होता है, ऐसा लगता है मैं जाके पहले सुनाऊं उसको, परंतु सुनाने की तीन स्टेप है, सबसे पहली उसको समान में स्थित करना, दूसरा महिमा करना उसकी, उसके बाद में उसको शिक्षा देना, जिसको बाबा ने कहा था बीज डालना फिर हल चलाओ, याद है ना मुरली, अच्छा ये बाबा ने बोला नहीं था पर ये भी है, पहले वो मुरली थी स्वयं को सम्मान में रहना और दूसरों को सम्मान देना, ये मुरली थी, तो पहला जो पार्ट था वो यही था कि पहले स्वयं सम्मान में स्थित हो जाना, पर हमारे पास टाइम कहाँ है ये सब, बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लिए हमें तो तुरंत ठीक करना है उसको, हाँ हमारे पास टाइम ही नहीं है, पता नहीं इसके बाद दूसरी बार इसने अगर इसका मोबाइल बजा ही नहीं, अभी बज रहा है अभी टाइम है, उसको समझा दो पूरा निकाल दो उसके ऊपर कि अभी बज रहा है ना, दूसरी बार उसको कोई बता देगा हमारे, कोई दूसरा बता देगा बाद में बजेगा ही नहीं, तो हमारे तो बोलने का चांस गया ना चांस, फिर ये ऐसा गोल्डन चांस फिर थोड़ी आएगा, दूसरों को सिखाने का समझाने का करेक्शन देने का मार्गदर्शन करने का श्रीमद् सुनाने का ये गोल्डन चांस होता है, कभी कभी आता है, ये उसकी इंतजार में रहती है आत्मा कब किसका मोबाइल बजता है, उसको जाके बताओ कि ये गलत है, पहले ही बंद करना चाहिए था, कौन देखना है कौन चप्पल पहन के अंदर आ गया, तुरंत उसको सिखाना, तुरंत उसको नियम और मर्यादाएं उनको सिखाना, जैसे हम अगर नहीं सिखाएंगे तो उनका कल्याण असंभव है, ऐसे और पूरा ही डूब जाएंगे, वो हम ही निमित्त है जैसे समझाने के लिए, छोटी छोटी बात में भी आत्माओं के प्रति घृणा उत्पन्न होती, हमको अगर नींद से किसी ने उठा दिया छोटी मोटे काम के लिए तो भी घृणा उत्पन्न होती है, ऐसे काम के लिए बुला दिया कि जहां बुलाना नहीं चाहिए था, जहां हमारे बिना भी वो हो सकता था तब भी घृणा उत्पन्न होती, या फिर हमारे ऊपर जब दोष लगाया जाए झूठा झूठा दोष, तुमने ये किया है, हमने किया ही नहीं परंतु फिर भी लगाया गया, तब भी उस आत्मा के प्रति चाहे वो कोई भी हो, फिर कितनी भी बड़ी कितनी भी महारथी, उस आत्मा के प्रति भी घृणा उत्पन्न होती है, सूक्ष्म घृणा, वो हमें भी पता नहीं चलती है, हम उसकी अभिव्यक्ति बोल के द्वारा करते हैं, पर चिंतन करते हैं, ऐसी आत्माओं को ढूंढते हैं कि जिस उसके द्वारा और कौन कौन डिस्टर्ब हुई थी, और जब आदान प्रदान होता है तो बड़ी राहत मिलती है कि मैं अकेला ही नहीं हूं, उसने और भी दूसरे भी है दो तीन जिनको ऐसे ऐसे कहा था, हाँ उनको भी तंग किया, तो कोई हम अकेले नहीं है इस युद्ध में, तो इससे भी परंतु ये जो राहत है क्या ये श्रीमत अनुसार है, इससे हमारे भाव निगेटिव हो रहे, वाइब्रेशंस निगेटिव फैल रहे, वाइब्स जो आ रहे वो निगेटिव जा रहे उस आत्मा तक, उसके सुधरने का कोई चांस ही नहीं है, फिर तो स्टॉप कर दिया हमने उसका, अभी सुधरना हो ही नहीं सकता, चलो भले कितने भी अवगुण है कितने भी उसके कटु बोल है, परंतु उसमें कुछ तो विशेषता है, बाबा ने उसको उसके अंदर 99 अवगुण है परंतु उसके एक गुण की वजह से इस यज्ञ में रखा है, हमें उसके अवगुण ही अवगुण दिख रहे हैं। उसका व्यवहार भी ठीक नहीं है, उसके बोल भी कटु है, जब देखो तब कमेंट्स करते रहता है, जो उसके पास जाते हैं सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, परंतु फिर भी वो कौन सा गुण भगवान को क्यों पसंद आया, वो ऐसा क्या देखा उसमें, हमको तो यही दिख रहा है बस। हम सोते हैं आते हैं लाइट ऑन, हम सो रहे हैं चलते हैं तो पैर लगा के जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हर दिन नई नई करते हैं कि जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं, परंतु भगवान ने कौन सा वो गुण उसने देख लिया कि उसने सोचा कि ये यहाँ यहाँ पे रहने के लिए। यही उनकी विशेषता है, चिमन भाई कह रहे थे ना। दूसरों के सामने पेपर जाकर दूसरों को शक्तिशाली बनाने के लिए रखा है। कुछ तो है, बाबा ने कुछ तो देखा, जरूर हम अगर ढूंढे तो हमको पता चलेगा कि उसमें ऐसी कोई एक विशेषता है, या वो जो सेवा कर रहा है कि उसकी जगह और किसी और को रख दिया जाए तो शायद वो काम उतनी आसानी से नहीं होगा जितनी आसानी से ये कर रहा है। वो स्थूल ही सेवा है, बस यहाँ से इधर रखना वहां से वहां रखना, ऐसी टाइप की स्थूल सेवा है, परंतु उसी में वो गुण है। अगर उसकी जगह कोई थोड़ा भी अच्छा आ जाए बुद्धिमान तो शायद वो कार्य ज्यादा समय नहीं चलेगा। और ये आत्मा कितने सालों से 40 साल से वो कार्य कर रही है, तो जरूर ऐसा कुछ ना कुछ तो उसमें है ही, वो तो है ही, तो सबने किया है, हम सोचते हैं तो सबने किया है, उसमें क्या है, परंतु ऐसी एक विशेषता जो जिस विशेषता पर हजारों आत्माओं में से उस पूरे राज्य में उसी एक पर नजर पड़ी बाबा की, जिसमें इतने सारे अवगुण थे पर एक गुण के वजह से उसको यहाँ रख लिया इस मधुबन घर में। क्या क्या
हाँ कर
लिया ना, चुना था वो हो गया पूरा, आने अभी तक वो इमर्ज नहीं हुआ है, अभी भी इमर्ज है पर अभी 40 साल हो गए ना अभी, अच्छा होगा पॉजिटिव है, ठीक है चलो 40 साल हो गए। जिस गुण के लिए बाबा ने लाया था वो गुण हमको ऐसा लग रहा है, ये हम हमारी संतुष्टता के लिए ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो इमर्ज होने वाला है। पर कुछ तो है, जरूर कुछ तो बात होगी, क्योंकि भगवान के डिसीजन गलत कैसे हो सकते हैं, इतनी सारी आत्माओं में से उसको चुनना, कुछ तो होगा जरूर, भले हमारी बुद्धि और समझ से वो बात परे है अभी, पर एक दिन पता चल जाएगा। हाँ फिर उसकी बाद में पता चलता है, कुछ तो होगा। हाँ वो तो तीन गुण तो हमेशा सब में है, एक तो सबसे भगवान को पहचान लिया, पवित्रता का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य को पालन किया, और तीसरा अपने जीवन को समर्पण कर दिया। ये तीन गुण तो चाहे कितने भी अवगुण है सब में है, वो समर्पण मनसा भी हो सकता है, वाचा भी हो सकता है, स्थूल कर्मना और स्थूल कैसे भी, उसकी परिभाषा तो बहुत ऊंची दी है बाबा ने, तो वो तो कर दिया, संसार को छोड़ के इस मधुबन घर में तो आ गए, चाहे फिर कुछ भी हो चल तो रहे अब तक, वो ब्रह्मचर्य को तो कहीं खंडित नहीं किया है, यज्ञ का नाम तो बदनाम नहीं किया है, परंतु ये सारी चीजें हैं, परंतु उसमें तो पक्के है, पवित्रता में तो फिर भी पक्के ही है संसार की तुलना में, इसके लिए वो महान ही है। तो ईर्ष्या, हसद, जेलसी, एनवी, डिसलाइक, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंट में समाई हुई होती है, वो तो अनेक है, ये सब माया की भावनाएं हैं। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं, हम जो भी बोलते हैं वो हमारी क्लासेस ऊपर जाती है बाबा के पास, अरे व्हाट्सएप से हरेक की ऑटोमेटिक टेक भरती जाती है, और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे तुरंत सुन सकते हैं बाप दादा। हर बोल का सार नहीं होता, बाबा ने देखा कि जो बोलते हो उसका सार नहीं होता, ऐसे ही बोलते रहते हो, आदत पड़ गई है। जैसे कोई कई बार कहते भी हो कि मेरी भावना मेरा भाव खराब नहीं था, परंतु वो जो बोलने की जो आदत हो गई है ना, वो आदत की वजह से बोल रहे, भाव शायद वो वैसा है भी नहीं, पर आदत पड़ गई है, फोर्स ऑफ हैबिट चला रही है, ऐसे ही निकल गया वो बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव शुभ भावना नहीं है वो किस खाते में जमा होगा? तो आत्मिक भाव शुभ भाव और ऊपर कहा था श्रेष्ठ भावना, अगर ये नहीं है तो माया की भावना है, अगर ये नहीं है तो किस खाते में जमा होगा? वेस्ट में हुआ ना, तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या गवाने का खाता ज्यादा होगा? ये तो गवाना है ना, तो बोल में भी गवाने का खाता ज्यादा होता है। वो बोल को भी चेक करो, ऐसे ही बोल दिया ये भाषा बदली करो, ऐसे ही बोल दिया ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ ये, जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव या सार हो, आत्माओं को अनुभव हो कि कुछ तो मिला है आज, सारे दिन भर के हमारे बोल ऐसे हो, ये सोचे कि बाबा सुनने वाला है, बाबा के पास रिकॉर्ड है। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं हुआ ना, तो जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि आप जितना जमा कर सकते हो उतना नहीं कर रहे, मतलब आप में उतनी योग्यता है, उतनी क्षमता कैपेसिटी है कि जमा ज्यादा कर सकते हो, परंतु कम जमा कर रहे हो, जितना और उतने के हिसाब बताया यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ आज दो बातें कहिए, एक तो टाइम एंड वर्ड्स, स्पीच बोल, समय और बोल। तो समय हमारा वेस्ट ना जाए व्यर्थ सुनने देखने और सोचने में, और बोल हमारे में हर बोल में श्रेष्ठ भावना शुभ भावना समाई हो। और बोल के पीछे भी क्या काम करती है? भावनाएं, मतलब जिस जैसे हमारी अभी किसी से कुछ घृणा भाव नफरत ईर्ष्या कुछ नहीं है, परंतु 10 साल पहले थी, और अचानक वो आत्मा अगर सामने आ जाए तो उस समय भावनाएं निगेटिव थी, तो अचानक यहाँ पर हम चाहते नहीं है निगेटिव बोल बोले पर वो निकल जाते, क्योंकि हमने भावनाओं का परिवर्तन नहीं किया। बोल के पीछे भावनाएं काम करती है। इसके लिए बोल पर कहां तक ध्यान रखोगे? हम ये सोचते हैं ना हम अच्छा बोलेंगे, पर फिर भी कुछ ना कुछ गलत ही बोल दिया जाता है। हम बोल को कंट्रोल कैसे करें? भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, भावना परिवर्तन नहीं हुई है, टॉन्ट्स करते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं टॉन्ट्स, कमेंट्स, टॉन्ट्स, ये सारी जो चीजें हैं आत्मा को घायल कर देती है सीधा। जो तीव्र पुरुषार्थ कर रही है ऐसा तीर लगा देते हैं कि सीधा पंछी नीचे गिर जाता है तड़पता हुआ। तो हमारा बोल में डबल मीनिंग वाले बोल, वर्ड्स एक है पर उसका अर्थ कुछ और है, डबल मीनिंग। तो बोल की तरफ ध्यान देना है कि ऐसे बोलना हो कि जिसमें कमेंट्स टॉन्ट्स रिमार्क या फिर हंसी मजाक में भी किसी को ऐसा बोल दिया कि वो तो घायल ही हो गया और हमको पता ही नहीं, और वो बोलेगा भी नहीं। वो ब्रह्मा बाबा के जीवन में बताते हैं ना, स्टेप मदर, उन्होंने एक शब्द बोल दिया स्टेप मदर, अभी उसने तो कुछ कहा नहीं, हाँ दादा लेखराज, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, परंतु उसको फिर भी बुरा तो लगा, खाना नहीं खाया, आधी रात में गए, उसको पूछा कि आपको बुरा लगा, तो उसने कहा बुरा तो लगा, वो तो जब पूछा तब पता चला। पर लगा तो, जैसे अंधे को कोई अंधा थोड़ी कहता है, लंगड़े को कोई लंगड़ा थोड़ी कहता है, बीमार बीमार को बीमार थोड़ी कहते हैं, या कोई डिप्रेशन का पेशेंट एडमिट है, अगर कोई कह दे हाँ ये डिप्रेशन का पेशेंट है, उसी के सामने एक बार हुआ था ऐसा, एक किसी पेशेंट को एडमिट किया था, अभी यहाँ ओवर लेते हैं ना सिस्टर लोग, तो डायग्नोसिस बोलते हैं, ओवर में ऐसा कहा जाता है ना, एक सिस्टर जब उसका ड्यूटी पूरा हो रहा है दूसरा सिस्टर का ड्यूटी चालू हो रहा है, तो उसको बताती है सब कुछ, ये पेशेंट है हाइपरटेंशन है डायबिटीज है शुगर है ये है, ये दवाई दिया ये दवाई देना है, तो उसमें डायग्नोसिस बताते। उस समय एक बहन को एडमिट किया था तो बहुत दुखी थी, डायग्नोसिस था डिप्रेशन, फिर उन्होंने चालू कैसा किया, और देना ये पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट एडमिट हुआ है, पेशेंट सामने है उसको कह रहे हैं कि ये डिप्रेशन का पेशेंट एडमिट हुआ है, इसको ये दवाई चालू की है, ये दवाई दिन में मकी है, ये दोपहर का डोज है, ये रात का डोज है। अब पेशेंट का फोन आया मुझे अभी क्या कहे और ज्यादा बढ़ जाएगा वो तो ये ऐसी चीजें हैं कि उनके हिसाब से तो राइट है, और ऐसा ही दिया जाता है कि जो डायग्नोसिस तो पता नहीं होता है, सामने वाला जो नया ड्यूटी पे आ रहा है उसको तो कुछ पता नहीं है। सुबह क्या हुआ, उसका ड्यूटी चालू हो रहा है 2 बजे, सुबह से उस पेशेंट, ये नया पेशेंट है, उसको कुछ पता नहीं, तो वो तो बोलता ही है कि ऐसा है, पर वो सामने वाला तो घायल हो गया। तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, कोई बीमारी किसी को बुरा लगता है अगर उसकी बीमारी के बारे में चर्चा की जाए तो, ये कहा जाए तो हम क्या बोल, हर दिन सुधारने, वो तो एकदम लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हमारे बोल परफेक्ट हो गए, हमको पता ही नहीं हम किसको किसको घायल कर देते हैं जाते जाते, कंटिन्यूस बांध चालू रहते हैं हमारे, और जो घायल होता है वो आके बताता थोड़ी ना, आई एम हर्ट, ऐसा कोई बताता है कि मुझे बुरा लगा, नहीं बताता। हाँ दूसरा आके कभी बताएगा नहीं, कोई अंदर ही रख देगा, अंदर ही अंदर रख देगा और जमा करके रखेगा, कभी भूलेगा नहीं, कभी समय पर वो एक दिन निकल जाएगा। और वो जिसको बोला वो भी निरंतर रहेगा उसकी बुद्धि में। एक बहुत बड़ा लेखक था, तो वो इतने अच्छे अच्छे लेख लिखता था, 2 कुमारियां इतनी प्रभावित हो गई उन लेख के द्वारा, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई, बहुत बड़ा जैसे वो लेखक था, तो उनकी बहुत इच्छा थी उनसे मिलने की, थी उसके जैसे फैन हो चुकी थी वो, पर जब एक दिन उससे मिलने गए, इतने कटु शब्द बोले उसने ऐसे ही कि उसका जो अब तक 10 साल से उसको पढ़ रहे थे उसकी अच्छी अच्छी कृतियां, उसके जो लेख, और उसने बोला कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भागो यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल आपसे मिलने के लिए, हमें बहुत काम है। तो वो वो 10 साल से उसको पढ़ रहे थे, अभी एक बोल की वजह से स्टॉप, हॉल्ट। हमको पता नहीं, हम इसके लिए बोल के पीछे, बोल पे काम नहीं करना है, परंतु भावनाओं के पीछे काम करना है, कि किसी के प्रति घृणा भाव तो नहीं है, नफरत तो नहीं है। अच्छा, कुछ आत्माएं ऐसी है यज्ञ में हमेशा आगे आगे करती रहती है, उनके प्रति भी हमारे मन में उतना, एक है घृणा भाव, एक है दूसरा सम्मान कम, इतना सम्मान नहीं है उन आत्माओं के प्रति, कुछ भी रहा तो आगे आगे, कुछ भी रहा तो आगे आगे।
इंद्र शर्मा आए थे ना,
तो कौन,
इंद्र शर्मा जो चित्रकार,
अच्छा आर्टिस्ट,
तो उनका चित्र देख कर के बहुत लोग प्रभावित हुआ, और एक भाई ने उनको देखने दिया, जब जाके देखा उसका तो कपड़ा ऐसे ही है, बोले ये आर्टिस्ट है
अच्छा
उधर स्वर्ग है, ये लक्ष्मी नारायण है,
ये साइड वाला दोनों, तो वो ही, मतलब बोल एक ऐसी चीज है, एक्चुअली हमें जाना है तो निःशब्द की ओर, एक ऐसी जगह, एक ऐसे स्थान पर, ऐसी हमारा जो लक्ष्य है जहाँ पर हम निःशब्द हो जाए, वहाँ बोल की भाषा ना हो, वहाँ बिना शब्दों के ही हम बोले। बाबा जो कहते हैं ना, रूहानी नैनों की भाषा, योगी जीवन की भाषा, संकल्पों की, नैनों की और भावनाओं की, इस भाषा, ये तो हमारा लक्ष्य है, परंतु वहां तक पहुंचना भी हमको एक्चुअली शब्दों के द्वारा ही है, शब्दों के द्वारा, शब्दों का ही विरोध करके हमें शब्दों से ही पार जाना है, परंतु करना ये सब शब्दों के द्वारा ही है, बड़ा काम है। चुप अगर रह जाए तो भी नहीं होगा, नहीं, परंतु अगर हम चुप रह जाए, हमारे पास बहुत अनुभव है, पर हम अगर चुप रह जाए तो वह अनुभव दूसरों तक नहीं पहुंचेगा। पर यदि हम बोले, दूसरा अल्टरनेट, दूसरा भाग, अगर हम बोले पर जो बैठे हैं वो हमारे शब्दों का न पकड़े, ये भी नहीं हो सकता, शब्दों को ही पकड़ेंगे, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जो बैठे है वो भी शब्दों से पार जाए, कम से कम एक तो जा सकता है, 99 नहीं जाएंगे। तो पहली जो है कि जिसमें हमने बोला ही नहीं, उसमें तो, परंतु बोला ही नहीं अर्थात शब्दों से, हमें शब्दों से पार ले जाना है, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। तो बोलना हमारा सार्थक हो, बोले भी तो आत्माओं को बोल से परे ले जाने के लिए, शब्दों को ना पकड़े, उस भाव को पकड़े और बाबा की भावनाओं को पकड़े, ऊंची मंजिल है। तो बाप दादा ने देखा ये हिसाब। तो दो चीजों के ऊपर अटेंशन रखना है आज, एक तो समय वेस्ट ना जाए और दूसरा कोई बोल वेस्ट ना जाए। अगर ऐसी कोई आत्मा है, हाँ मैं कह रहा था ऐसी कुछ आत्मा है जिनके प्रति सम्मान कम है, उनके गुणों के बारे में सोचो। ऐसी कुछ आत्माएं होगी जो उनको बहुत मानती है, उनसे बात करो। हम तो नहीं मानते, पर ऐसी कुछ तो होगी, एक दो तो है जो उनके संपर्क में है और उनको ज्यादा मानती है, उनसे बात करके उनके बारे में बोलो, ताकि उनके प्रति हमारे मन में थोड़ा सम्मान उत्पन्न हो और वो घृणा थोड़ी तो कम हो जाए, खत्म तो नहीं पर कम तो हो सकती है। तो सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं जब होगी तो स्वतः ही बोल शुभ आत्मिक होंगे। तो ये लक्ष्य रखना है आज। तो आज की मुरली कल कौन रिवाइज करेगा? सुशील भाई, आज की कल कितने प्रश्न लाओगे? 34 की उससे डबल, 134। ठीक है, ओम शांति।